श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम सुंदर राधा गिर गोवर्धन की जय। गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति देवी तुलसी महारानी की जय, भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौर भक्तबिंद की जय, गौर प्रेमानंदी हरिहरि गौर, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट असेंबल डिवोटीज, ऑल ग्लोरिस्ट श्री गुरु श्री गौरांग श्री प्रभुपाद महाराज की। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम हरे नामेव केवलम् कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 34वां श्लोक है। अस्पष्ट कीर्ति सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसां अमंगल्य निवारणं। अस्पष्ट कीर्तिः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसां अमंगल्य निवारणम्। अस्पष्ट कीर्ति सुयसा मूर्खो भवते पंडिता इदं स्वस्त्ययनं पुंसाम् अमंगल्य निवारणम् अस्पष्ट कीर्तेः सुयशा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्त्ययनं पुंसाम् अमंगल्य निवारणम् अस्पष्ट कीर्ति ही जिसका यश प्रकट ना हो सुयशाह अत्यंत प्रसिद्ध है मूर्खाह निरक्षर भवति हो जाता है पंडिताह विद्वान इदम यह स्वस्ति आयनम कल्याण पुंसाम मनुष्यों का अमंगल्य अशुभ निवारणम दूर करने वाला। अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। जो इस वृत्तांत को 3 बार सुनता है वह यदि समाज में सम्मानित नहीं भी हो तो अत्यंत विख्यात हो जाता है। हैं? कितना बढ़िया है। अब तो पाठ शुरू नहीं हुआ है। हैं? हाँ हाँ सबके सबके मुंह चेहरे खिल गए। अच्छा इसका मतलब सभी कीर्ति चाहते हैं, इसका यही अर्थ है। अच्छा और यदि निरक्षर भी हो परम विद्वान बन जाता है। ये और हेवी डोज है उससे आगे। दूसरे शब्दों में महाराज पृथ्वी का वृतांत सुनने में इतना शुभ है कि वह समस्त दुर्भाग्य को दूर भगाता है। महाराज पृथ्वी की तात्पर्य इसी संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ लाभ सम्मान तथा ख्याति चाहता है। प्रभुपाद जी जानते थे हार्दिक क्या अभिलाषा है। विभिन्न अवस्थाओं में भगवान या उनके भक्तों की संगति में रहने के कारण मनुष्य सब प्रकार से बहुत सरलता से ऐश्वर्यवान हो सकता है। भक्ति करने तथा उपदेश देने से मनुष्य प्रसिद्ध तथा महत्वपूर्ण बन सकता है भले ही समाज में उसका मान ना हो। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है केवल श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता को सुनकर वह समाज में महान पंडित माना जा सकता है, क्योंकि इन ग्रंथों में भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाओं का वर्णन है। यह संसार पग पग पर विपत्तियों से भरा हुआ है, किंतु भक्त को डर नहीं लगता, क्योंकि भक्ति इतनी कल्याणकारी है कि यह समस्त दुर्भाग्य का प्रतिकार स्वतः कर देती है। क्योंकि पृथ्वी महाराज के विषय में सुनना श्रवण भक्ति के कार्यों में से एक है, अतः स्वाभाविक है कि उसके सुनने से सौभाग्य प्राप्त होता है। चौतीसवें श्लोक में ऐसे कई एक श्लोक, इसके पहले वाला जो श्लोक है और आगे वाले भी कई श्लोक हैं, इसके पीछे दो तीन श्लोक में से लेकर के आगे तक हमें लगता है कि 31-32वें श्लोक से लेकर के आगे तक जितने श्लोक हैं कुल मिलाकर के इसमें 39 श्लोक है। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 और 39 आठ श्लोकों में फलश्रुति है। फलश्रुति शब्द का क्या अर्थ है? श्रुति माने सुनना और फल माने इस अध्याय का क्या फल है
सुनने।
हाँ हाँ, अध्याय का क्या फल है वही सुनाया जाता है। बात तो एक ही है, अध्याय अध्याय सुनने से पढ़ने से अथवा पढ़ाने से क्या फल है वो सुनाया जाता है। इस श्लोक में तो यही सुनाया जा रहा है ना, इस अध्याय का पठन पठन करने से क्या फल है वही सुनाया जा रहा है, ये विशेष बात है। इसको फल श्रुति बोलते हैं। और भारतीय परंपरा में सनातन धर्म संस्कृति में जितनी भी बातें हैं, कोई व्रत है उस व्रत का महात्म्य जरूर लिखा हुआ है। कुछ दिन पिछले वर्ष नहीं, इसी वर्ष पुरुषोत्तम मास आया था, और पुरुषोत्तम मास आते ही हजारों की संख्या में यात्रियों की भीड़ लग जाती है वृंदावन में। क्यों लगती है? पुरुषोत्तम मास एक छोटी सी किताब मिलती है बाजार में, और उसमें इतनी फलश्रुति, इतनी महिमा उस मास की लिखी गई है, आदमी भागा भागा यहां आता है। क्या लिखा हुआ है? इस महीने में यदि वृंदावन में कुछ दान करोगे तो वो अनंत गुना बढ़ जाए। अब जितने बिजनेस क्लास के लोग बनिया है वो बहुत जल्दी आते हैं, वो चाहते हैं कि एक रुपया देकर हमको जितना हो सके खींचना है वो खींच ले, जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके वो उससे वो ड्रॉ करना चाहते। भक्त लोग, प्रभुपाद जी ने वैसे पुरुषोत्तम मास के बारे में बहुत कुछ नहीं बतलाया, हमारे मंदिर में भी कई भक्त लोग इस मास को ज्यादा पालन नहीं करते, जो नॉर्मल जैसे भक्ति चलती है चलते हैं। वैसे अधिक करने से अच्छा है, बुराई क्या है, कोई बुराई नहीं, लेकिन पुरुषोत्तम मास की महिमा सुन करके इतने लोग आ जाते हैं। ऐसे ही हर साल एक दूसरा मास भी आता है कार्तिक, वही वृंदावन में है, वही राधा श्याम सुंदर है, वही राधा दामोदर है, लेकिन उन दिनों में इतनी भीड़ आती है, इसके पीछे कारण क्या है? वेद व्यास ने कहीं ना कहीं थोड़ी दबा दे दी है, ऐसी फलश्रुति लिख दी है कि व्यक्ति सुनते ही उस कान खड़ा करके सुनता है, नहीं चलो चलते हैं वृंदावन, चलो ये मन गंगा जमुना तीर, चलो वहां चलते हैं, वहां निवास करेंगे, इतना फल है। तो मनुष्य प्राणी मात्र की ये स्वाभाविक प्रकृति है, वो जब से देह धारण किया है कुछ ना कुछ उत्कृष्ट फल पाना चाहता है। दो ही चीज में पूरा जीवन उसका लगा हुआ है, क्या है? समस्याओं का समाधान करना, दुख निवारण और सुख की प्राप्ति। इन्हीं दोनों कामों के अतिरिक्त और कोई काम है क्या? हमें नहीं लगता। जितने सांसारिक स्वार्थी मानव है उनका उनकी प्रधान चेष्टा यही दो है, आत्यंतिक दुख के निवृत्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। श्री कृष्ण ने भी बड़ा रसगुल्ला रखा वहां पर गीता में, यम लब्ध्वा जिसको प्राप्त करके, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, बोले वो ऐसा सुख है, ऐसा रसगुल्ला है जिसको प्राप्त करने के बाद बाकी सारे पकवान फीके लगने लगते हैं। बस जितने ऋषि महर्षि ब्रह्मर्षि सन्यासी ब्रह्मचारी जति सब भागे, कहां है वो ब्रह्म सुख, भागे भागे, ये सुख हमको चाहिए, है ना, ये सुख चाहिए। तब नियम बनाएगा, जब तक भौतिक सुख से तुम मोह मोड़ नहीं लेते हो तब तक वो सुख तुम्हारे हाथ में लगेगा नहीं है। सो ब्रह्म सुख है। बाह्य स्पर्शेषु असत्तात्मा विन्दति आत्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम् अक्षयम् अश्नुते। भगवद गीता, बाह्य स्पर्श से जो सुख है वो किंचित है, उसकी कोई तुलना इसके साथ नहीं। सुखम् अक्षयम् अश्नुते, अक्षय सुख कितना बड़ा रसगुल्ला है, कितना कितने भारी महिमा, और सत्य भी है। इस सुख के, इस सुख का प्रलोभन है, संसारी व्यक्ति को आकृष्ट करने के लिए प्रलोभन की बड़ी आवश्यकता है, बिना प्रलोभन के लिए आएगा नहीं लाइफ में। डिपार्टमेंट में हम है, हमको पता है, जैसे सोचते हैं कि 3 दिन मुंबई में रहने के लिए सुविधा हम देंगे, बस हम बनेंगे, पर लेंगे जो 3 दिन की सुविधा, भोजन पानी किताबें, प्रलोभन है। कहीं भी किसी भी मामले में प्रलोभन की बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि संसारी जीव प्राय स्वार्थी है। केवल जो भगवत भक्त होते हैं, जिनको और कुछ करने की बाकी नहीं है, वही परार्थ के लिए काम करते हैं, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, वरना सांसारिक जीव बिल्कुल स्वार्थी है, उनको कुछ ना कुछ चाहिए प्रलोभन। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े लोग काम करते हैं। वेद व्यास जी महामुनि, वो जानते हैं कोई भी वस्तु हम अगर रखते हैं और उसकी महिमा नहीं बताते, फिर व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित नहीं होगा। आज के समय जमाने में भागवत कथा का इतना प्रचलन है, क्यों है आप विचार करके देखिए। भागवत ग्रंथ इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है, साक्षात पद्म पुराण में लिखा हुआ है, तेनेयम वामयी मूर्ति ही प्रतीक्षा वर्तते हरे, पठनात् सेवनात् श्रवणात् दर्शनात् पापनाशिनी। ये तेनेयम वामयी मूर्ति ही, वामयी मूर्ति माने, ये मूर्ति माने विग्रह, प्रकट हुआ है। क्या प्रकट हुआ है? शब्दमय मूर्ति। जैसे हम कहेंगे मूर्ति शिलामयी है, मृणमयी, मनोमयी, धातुमयी, है ना, ये जैसी मूर्तियां होती है 8 प्रकार की मूर्तियां, पर ये जो मूर्ति है वो भगवान जब एकादश स्कंध में 8 प्रकार की मूर्तियों का वर्णन करते हैं, ये मूर्ति उसमें है नहीं, ये शब्दमयी मूर्ति है। तेनेयम वामयी मूर्ति ही प्रत्यक्षा, ये प्रत्यक्ष कृष्ण का श्री विग्रह है, यह है। परंतु कृष्ण के पास आकर के उनकी सेवा, उनका सेवा अभिलाष सबको नहीं होता है, कुछ ना कुछ मांगने के लिए आते हैं। इस चूंकि ये भी मूर्ति है, ये भी विग्रह है, इसलिए इनके पठन पाठन का फल वेदव्यास ने दिया है। कई भी महाभारत में देखो, एकादश में भी फलश्रुति है, गीता में भी प्रत्येक अध्याय की फलश्रुति है, उसके श्रवण पठन पाठन में क्या है। वेद व्यास ने बहुत अच्छा किया संसारिक लोग। तो हम ये कह रहे थे आज के जमाने में, आज की डेट में जितनी कथाएं होती है, अधिकतर कथाएं करने वाले अग्रवाल गोष्ठी है ना, अधिकतर ने 99% कथाएं, पर ज्ञान पिपासा के लिए भागवत के प्रति प्रेम है, तेनेयम वामयी मूर्ति ही, इसके लिए कथाएं कितनी होती है? प्राय भी नहीं है, प्राय नहीं। ना तो उस कथा को कोई कहना चाहता है, ना उस कथा को कोई सुनना चाहता है। ये तो प्रभुपाद जी की बड़ी कृपा हो गई हम लोग पर कि उन्होंने दे दिया नित्यम भागवत सेवया, निष्काम भाव से नित्य प्रति, नित्य प्रति भागवत सेवा। पर महिमा भागवत में भी महिमा अपना है, अपनी जगह में, कि सुनने मात्र से भगवान हृदय में कैद हो जाते हैं। पर चैतन्य चरितामृत में ज्यादा महिमा है नहीं। आप देखिए चैतन्य चरितामृत में 62 अध्याय है, किसी अध्याय में कोई फलश्रुति है? केवल एक ही फलश्रुति है कि जो चैतन्य चरितामृत का पठन पठन करेगा श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रति हो जाएगी। बाकी धन बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, जो जिनको पुत्र नहीं है महिला उसको पुत्र हो जाएगा, ऐसा कहीं चैतन्य चरितामृत में तो है नहीं। हम नहीं लिखते है कहीं प्रभु जी ने है ऐसा कि जो चैतन्य चरितामृत का पाठ करेगा अपुत्रवती पुत्रवती हो जाएगी? ऐसा नहीं है। ओके, वो निष्काम ग्रंथ है, पर भागवत भी निष्काम होते नहीं है, वाक्य बोलती, पर यह सब कुछ कामना पूरी करने वाला ग्रंथ है ये। और चैतन्य चरितामृत में कबीराज गोस्वामी ने एक संकेत जरूर दिया है। उन्होंने दिया सिद्धांत बलिया चित्ते ना करो आलस, जहां हैते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। इतना ही कृष्ण के बारे में। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांते, चित्त दृढ़ हया लागे महिमा ज्ञान हैते। दो पद में चैतन्य चरितामृत में कबीराज गोस्वामी ने महिमा सगुण की जो महिमा है वो बताया। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत है, चैतन्य महाप्रभु की महिमा का बखान करने के लिए कबीराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में कृष्ण लीलाओं का वर्णन किया है। कृष्ण की गुणवत्ता का इसलिए चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया गया है भक्तों, कि उसमें क्या कृष्ण कितने ग्लोरीफाइड है, कितने कृष्ण कितने महिमा मंडित है, और वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महिमा जानी ये सब सिद्धांत है, इसलिए उन्होंने कह दिया। सो वेदव्यास जी बड़े पारंगत ऋषि महामुनि, वो जानते थे सभी लोगों को, सभी उनके प्रजा के समान है, सबको आकृष्ट करने के लिए उन्होंने दिया कि मैं ये भी करूं। तो यही जो फलश्रुति सामान्य फलश्रुति है, उसी सामान्य फलश्रुति को ये श्लोक वर्णन कर रहा है। क्या कहते हैं? अस्पष्ट कीर्ति सुजसा, बोले जिनकी कीर्ति नहीं है वो कीर्तिवान बन जाएगा। अब प्रभुपाद जी कहते हैं सबके अंदर थोड़ी थोड़ी इच्छा होती है कि हमारा भी यश फैले, कीर्ति फैले, सभी कीर्तिवान होना चाहते हैं। लेकिन कीर्ति से पहले जो जिसे राह को पार करना होता है उसको कोई नहीं करना चाहता। एक मां ने अपने बेटे को शिक्षा देती हुई कहा, बेटा जिंदगी फूलों की सया पर नहीं बनती, कांटों की राह पर चलने से बनती है। जिन जिन ने भी फूलों की सया पर जिंदगी बिताई उनको कभी भी कीर्ति की प्राप्ति नहीं हुई। देखिएगा, जीवन काल में जिन्होंने जितना सुख सुविधा का प्रयोग किया है वो उतना कमजोर आलसी और संसार से हाहताश होकर के चल गया, भोग एरोग भयम। और पूरे भागवत में देखिए 5 साल का बालक ध्रुव, उनका जीवन, उनकी राह कितनी भयंकर, कांटों से बिल्कुल पूरा। पिता ने नहीं पूछा, मां ने अपनी असहायता प्रकट कर दी, हैं? एकदम जीवन बिल्कुल। नारद जी के जीवन इतिहास देखो, कोई भी आदमी, कोई भी महापुरुष हुआ है जिनका जीवन फूलों की सैया से नहीं बना, बिल्कुल कांटों से भरपूर है जिंदगी। कभी कभी हम लोग विचार करते हैं इस्कॉन में हमारे भक्त लोग कभी कभी बहुत कमजोर पड़ते हैं। इसका कारण है प्रभु पाद ने इतनी सुख सुविधाएं दे दी, वो सुख सुविधा हमारी प्रगति के लिए बाधक बनती है। खाओ पियो। कई भक्त लोग रहते हैं, क्या है भोजन की क्या चिंता है, जाओ बाल्टी उठाओ दो चार बाल्टी घुमाओ और प्रसाद हो गया जय राधा। और कहीं महीने में दो चार प्रोग्राम हो जाए, दक्षिणा 500-500 हो गया, दो चार हजार कमरे का भाड़ा उठ गया। जितनी सुविधावादी जिंदगी उतनी कमजोर जिंदगी है, कांटों की राहों पर बनती है जिंदगी। तो ये भी एक फल, ये सामान्य फलश्रुति ध्यान देना चाहिए। प्रतिष्ठा तो चाहिए, पर प्रतिष्ठा के लिए एक सरल सुखद उपाय है कि कहते हैं यदि आप पृथु महाराज जी के चरित्र को तीन बार पढ़ लोगे, तीन बार सुन लोगे, इसका मतलब होता है कि इनका यदि आप विश्लेषण करेंगे तो निश्चित रूप से आप कीर्तिमान बनेंगे। कीर्ति जस्य सजीवति शास्त्र कहता है, जिसकी कीर्ति है वही संसार में जीवित है। नारद जी चले गए, आज भी है कीर्ति। बड़े बड़े लोग, सामाजिक हो चाहे आध्यात्मिक हो, जितने चले गए, सुभाष बोस चले गए, महात्मा गांधी चले गए, सामाजिक स्तर पर उनकी कीर्ति आज भी है। कितने भक्त लोग चले गए, आज हम दोनों भक्त लोग, वो महेश पंडित जी और उदाहरण दत्त ठाकुर, उनकी कीर्ति आज भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब रामानंद पटनायक के साथ वार्तालाप करते थे उस राज महेंद्र में, तो उस समय उन्होंने एक प्रश्न किया रामानंद पटनायक जी से, बोले मैंने सुना बहुत लोग कीर्ति चाहते हैं, पर कीर्तियों में से कौन सी कीर्ति सबसे अच्छी कीर्ति है? कीर्ति प्रभु कहे कीर्ति मध्य कौन श्रेष्ठ कीर्ति? रामानंद पटनायक काल विलंब किए बिना उत्तर देते हैं, कृष्ण भक्त बोलिया जार भय ख्याति। जिसका जस कृष्ण भक्त के रूप में हो जाता है वो संसार में कीर्तिमान माना जाता है, वही कीर्तिमान है। और कृष्ण भक्त बनने के लिए क्या चाहिए? कृष्ण की कथा चाहिए। तब कथामृतम तप्त जीवनम विभीरितम कल्मषापहम। कल्मष अपहम, जब तक पाप प्रवृत्ति है, जब तक पाप है तब तक ताप है, तब तक व्यक्ति कीर्तिमान नहीं बनता। निष्पाप व्यक्ति ही कीर्तिमान बनता है, पापी नहीं बनता। इसीलिए यहां पर गोपियों ने कहा है कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूपी कृणंते ते भूरिदान। वो सुन सुन करके वो कीर्तिमान बन जाता है, भूरिदा वो भी भूरिदा होता है। और श्रीमदाततम केवल भगवान श्री कृष्ण की कथा इतनी वीर्यवती है, वो व्यक्ति को श्रीमत कर देता है। श्री माने सुंदरता, श्री माने विद्या और श्री माने भक्ति। तो सुंदरता, उनका चरित्र सुंदर होता है। श्री माने ऐश्वर्य संपत्ति है ना, और जैसे ही चरित्र सुंदर हो जाएगा तो उनके पास सारी संपत्ति आ जाएगी, ये भी शास्त्रीय प्रमाण है, है ना। सुमति जहां तहां संपत्ति निधान, जहां को मते तहां विपत्ति नान। जहां कुमत है वहां तरह तरह की विपत्ति है, जहां सुमति है वहां तरह तरह की संपत्ति है। तो कल्मष को खत्म करती है ये कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, इसलिए इसको वीर्यवती कथा माना गया, पोटेंशियल। तो व्यक्ति अपने आप कीर्तिमान हो जाता है, पाप कट जाता है, ताप कट जाता है, श्री उसके पास आती है, चरित्र सुंदर हो जाता है और विद्या विद्यावधु भक्ति से वो विभूषित हो जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति का दूसरा नाम दे दिया विद्यावधु। वो बहु, वो हमारे पास जो भक्ति है वो बहु की तरह है। जिनके पास उद्दंड भक्ति है संसार में उसकी ख्याति नहीं होती है। मणिधर फणि प्रायादि से भयंकर, सर्प तो ऐसा ही भयानक है उसके माथे पर मणि हो जाए फिर और ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसा ही विद्या तो ऐसा ही घमंड को जगाती है और उसके ऊपर अहंकार आ जाए फिर तो बहुत खतरनाक होता है। पर महाप्रभु ने कहा ये विद्या कैसी है, बहु कैसे चलती है पता है ना? हाँ जी, आज का आदर कोई नहीं चलना चाहती। विद्या वधु वो बिल्कुल घर में जब आती है नई नवेली बहू सहमी सहमी चलती है। एक दिन आता है तो उसको देख करके उसका पति सहमा सहमा आता है धीरे धीरे कर। शुरू शुरू में तो बहुत धीरे 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 गज गमनी करे गमनी चंद्रमुखी। महाप्रभु कहते हैं भक्ति की तुलना विद्यावधु जीवन, विद्यावधु यह बहु के समान है, कोमलता है। विद्या अथवा भक्ति विराजती है विनम्रता रूपी सिंहासन पर, इसलिए विद्यावधु जीवन ये विद्या है, परम विद्या है। सो कहने का तात्पर्य यही है कि उनके पास विद्या बुद्धि सब कुछ आ जाता है तो व्यक्ति को कीर्तिमान होने में ज्यादा विलंब नहीं लगता। रामानंद पटनायक की कीर्ति को बढ़ाने में उनको प्रयास नहीं करना पड़ा, उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी उनकी कीर्ति आ गई है कि नहीं। सनातन गोस्वामी की, जीव गोस्वामी की, जगतगुरु श्री प्रभुपाद जी की, इनको कीर्ति देने में उनकी भक्ति ही सहायिका है। इसलिए पृथ्वी महाराज जी का चरित्र पाठ करने वाला व्यक्ति तुरंत भक्तिमान होता है, निष्कलंक हो जाता है, उनकी कीर्ति बढ़ जाती है। कीर्ति बढ़ाने के लिए आवश्यक और कुछ विशेष प्रयास करने की जरूरत है नहीं। सिंपल हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, प्रभुपाद जी कहते हैं बोले केवल भगवत गीता और भागवत का अध्ययन अनुसंधान करिएगा, उससे परम विद्वत्ता आ जाएगी। ये भागवत में एक बढ़िया शब्द मूर्ख शब्द आ गए। वैसे कई लोगों को मूर्ख शब्द अच्छा नहीं लगता, मूर्खो भवति पंडितः। मूर्ख शब्द की परिभाषा है मूर्ख माने जो अहिकर परलौकिक कर्तव्य के संबंध में अज्ञान है। फिर से सुनिए, अहिक माने यह काल और परलौकिक माने परकाल। तो यह काल और परकाल ये दोनों काल के कर्तव्यों के संबंध में जो अनभिज्ञ है उनको कहते हैं मूर्ख। उनको कहते हैं मूर्ख जो अपने कर्तव्य ज्ञान शून्य है। हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो उन्हें जानता। सनातन गोस्वामी ने कहा है के आमी केने आमारे जारे तापत्र, यहां हम यहां नहीं जानी हमें के मने पंडित आए। हम ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं और मेरा कर्तव्य क्या है, फिर भी लोग हमको पंडित कहते हैं। मैं नहीं मानता अपने आप को पंडित, यहां ना ही मानी। तो जो विद्वान लोग होते हैं वो सबसे पहले कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करते हैं और शास्त्रों में इन्हीं का वर्णन आया है क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है। यहां श्लोक में लिखा गया है यदि व्यक्ति प्रथम महाराज जी का चरित्र का पठन पाठन करता है मूर्खो भवति पंडिता, अर्थात तो उनका उनकी कर्तव्य बुद्धि आ जाएगी। पंडा क्या है, पंडा शास्त्र में कहा गया कि ईश्वर तत्व को पंडा कहा गया है। ईश्वर तत्व क्या है, जहां जहां नेत्र पड़ी तहां कृष्ण स्फुरे। जब तक व्यक्ति इस उपलब्धि तक नहीं आ जाता तो ईश्वर तत्व का ज्ञान उसका नहीं है, पर मात्रा में कम है। शास्त्र में कहा गया है पंडितः समदर्शिन, जहां दिखता है जहां जिधर देखेगा वो ईश्वर की शक्तियों की देखेगा। ईश्वर के अतिरिक्त जब और कुछ देखता है वो मूर्ख है, वो माया से मोहित है। रितेर्थम यत् प्रतीयते, और यदि सर्वत्र ईश्वर का दर्शन करता है वो पंडित है। चाहे कुत्ते में हो, चाहे गधे में हो, चाहे स्वपच में हो, चाहे ब्राह्मण में हो, चाहे जड़ वस्तु में हो, चाहे रूमाल में हो, चाहे मोबाइल में हो, चाहे कहीं भी, कृष्ण का दर्शन धीरे धीरे करके होता है, उतने जल्दी तो नहीं होता। हाँ, इसको कहा गया वो पंडित। प्रभुपाद जी कहते हैं गीता कोई यदि अध्ययन करता है, भागवत का अध्ययन करता है, तो धीरे धीरे वो उस लेवल तक, उस स्तर तक पहुंच जाता है। कैसे? तो भागवत जी कहते हैं भाई आप साधु संग करिए। साधु संग कर किया, उनको कहा गया गुरु ग्रहण करना चाहिए। तस्मात गुरु प्रपद्यत जिज्ञासु से उत्तमम, जिनको ये उत्तम श्रेय की लालसा है उनको गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। देखो गुरु नहीं बनाना ये मूर्खता है। इसी स्तर पर आप सब जान सकते हैं। कई लोग संसार में अरे हम नहीं गुरु बनाते, हमारा तो भागवत गुरु है, हमने एक बहुत बड़े प्रवाचक है, उनके चरणों में हम अपराध नहीं करना चाहते। उन्होंने भागवत की कथा में कहा था, हम गए थे इधर ये वृंदावन में श्रौत मुनि आश्रम में सुनने के लिए, उन्होंने कहा गुरु की क्या आवश्यकता है, भागवत ही गुरु है, भागवत ही गुरु है। पर कभी भी भागवत जी को व्यक्ति वो शिक्षा के रूप में ले सकता है, गुरु बनाने से दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत होगी? ग्रंथ है ये, पूर्णांग है, किस लिए कौन सा कर्तव्य किस समय चाहिए वो गुरु ही निर्णय कर सकता है। भागवत से पढ़ के नहीं हो पाएगा, वो भ्रमित हो जाएगा। कमजोर वाला व्यक्ति वो भागवत पढ़ के अपना कर्तव्य निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए भागवत जी स्वयं ये संविधान देते हैं कि भाई तस्मात गुरु प्रपद्यत, गुरु के पास जाना चाहिए। बस इतनी सी बात जान ली उसकी मूर्खता कट गई और गुरु के पास चला जाएगा। फिर वहां जाकर क्या करेगा? साधन भजन करेगा। ताते कृष्ण भजे करे गुरु सेवन, माया जाल छूटे पाए कृष्ण चरण। सीधा सीधा प्रोसेस, भागवत आपको सीधा मार्ग दिखाती है, जाओ इधर। यही प्रभुपाद कहते थोड़ी देर में। और ना जाने कितने लोग भागवत के सहारे महामहा पंडित हुए। जीव गोस्वामी पाद ने सख संदर्भ लिखा है, क्या है भागवत के श्लोकों का ही उन्होंने अनुशीलन किया है गहराई में। और सनातन गोस्वामी ने कहा अति नीच उच्चता कर, भागवत के आश्रय लेने वाला व्यक्ति नीच रह ही नहीं सकता। प्रभुपाद जी ने भागवत का तो आश्रय लिया, प्रथम स्कंद ही लेकर के चले गए विदेश, उसी से उन्हीं से उनका काम बन गया प्रथम स्कंद से। भागवत का प्रवचन और गीता का प्रवचन से मतलब छोटी छोटी कथाएं, थोड़ा थोड़ा दर्शन हो गया। महान पंडित विद्वत्ता है। गीता का अनुसंधान करने वाला व्यक्ति मूर्ख रह सकता है? नहीं रहेगा, कभी नहीं रह सकता। भागवत का, चैतन्य चरितामृत का सिंपल सरल भाव है, इदम स्वस्थ यनम। और देखो और क्या कहा गया, पंडित हो गया व्यक्ति, उसकी कीर्ति भी बढ़ गई और जीवन में मान लीजिए कीर्ति भी हो गई, पंडित भी हो गया, लेकिन शरीर खराब रहा था, बीमार रहा। अच्छी विद्वत्ता है, ज्ञान बहुत जानता है, साधन भजन ठीक है, लेकिन बीमार रह रहा है, करेगा क्या? कथा कहते समय खांसी आ जाए तो वो कैसे कह सकता है? नहीं होगा, सवेरे उठ नहीं सकता। इसको स्वस्थ या नम नहीं कहते, इनको तो दुख कहते हैं, अमंगल कहते हैं, अमंगल कहते हैं। लेकिन भागवत के पठन पाठन से कहते हैं स्वस्थ यनम, स्वस्थ यनम। हरि शब्द नाना अर्थ दुई मुख्या तमा सर्व अमंगल हरे प्रेम दिया हरे मन। बोले हरि शब्द के तरह तरह के अर्थ है, पर दो 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 मुख्य है। क्या है? सारे अमंगल का हरण कर लेता है और प्रेम लेकर के मंगल जगाता है। इसीलिए कहा ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुर मधुसूदन मंगलम पुनरिक्याख्यम मंगलम गरुड़ध्वज ओम स्वस्ति नो गोविंद स्वस्ति नो अच्युतानंद स्वस्ति नो वासुदेव विष्णु दधातु स्वस्ति नो नारायण नरो स्वस्ति नो पद्मनाभ पुरुषोत्तम दधातु स्वस्ति स्वस्ति सुमंगलिकेषु महान सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण दधातु हरि ओम शांति। दक्षिणा नहीं आई। दक्षिणा मैंने तो आधी आधे आधा स्वस्ति वाचन किया है सो हमारा कहने का तात्पर्य यह है, स्वस्ति वाचन में भी भगवान के नाम को ही लिया जाता है, ओम स्वस्ति नो गोविंद, गोविंद ही स्वस्ति है। तो भागवत में केवल इदम भागवतम नाम पुराणम, ये नामात्मक पुराण है, नाम ही नाम है। महारानी कुंती स्तुति में देखिए आपको 40-45 डिफरेंट नाम आएंगे, अधिक नाम, नाम 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 ही नाम है। तो हरि हरि से पूर्ण ये ग्रंथ, हरि साक्षात हरि है। तो इनके आश्रय करने वाले क्या उनके जीवन में मंगल आएगा? ये अमंगल आ सकता है? कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं आ सकता, कभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अमंगल के भीतर रहने वाले वसुदेव कंस के कारागार में सात सात फाटक, और जैसे ही कृष्ण को उन्होंने गोद में उठाया वह सारे फाटक धड़ाधड़ खोले और गए भी कृष्ण को लेकर के, और लेकर के जो यशोमती के गोद में रखे और वहां से उस कन्या को लेकर के आए, वो माया देवी थी। एक भक्त ने प्रश्न उठाया, प्रभु कृष्ण को तो गोद में ले लिए तो माया खुल गई, अब माया को लेकर आए तभी भी फाटक खुला था? फाटक खुले थे कि नहीं थे? नहीं जी। तो इस पर आचार्यों ने टीका करके बतलाया, सुनो एक बार यदि कृष्ण को कोई गोद में ले जाता है, यदि अपनी पद किस्मत से कभी भी माया के चंगुल में आ जाता है, माया उसका कुछ भी नहीं। ये विशेष है, यदि उसकी बदकिस्मती है तो कभी भी माया के चंगुल में आ ही गए, पर जैसे वसुदेव उस माया को लेकर आए फिर भी फाटक खुले रहे, ऐसे ही वो व्यक्ति एक दिन ना एक दिन कृष्ण को प्राप्त हो जाएगा। ये विशेष बात है। तो साक्षात श्री हरि को यदि गोद में कोई ले लेता है, भागवत को आत्मसात करता है, फिर उनके जीवन में मंगल ही मंगल है, इसमें क्या संदेह है? कोई संदेह नहीं, कोई संदेह, कोई संदेह नहीं है। मृषा गिरस्ता यसते असत तथा न कथ्यते यद भगवान अधुक्षज, तदेव सत्यम तदुहैव मंगलम, तदेव पुण्यम भगवत गुणोदयम, तदेव रम्यम रुचिरम नवम नवम, तदेव शश्वत मनसो महोत्सवम, तदेव शोकार नवशोषणम नणाम, यदुत्तम श्लोक यशो नुगीयते। बारहवें स्कंद में कहा गया है, ये साक्षात है। तदेव मंगलम, यही मंगल है, भागवत को आत्मसात करना यही मंगल है। मंगल 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 ही मंगल। यहां तक कहा गया है जो व्यक्ति भागवत कथा का आयोजन करता है वो छोड़िए इसकी खुशबू कितनी तेज है। जैसे मान लीजिए कोई इत्र लगाया, वो सुभाषित हो जाता है और साथ साथ उस हवा को भी सुभाषित करता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति को सुभाषित नहीं कर सकता। हाँ उसको सुभाषित खुशबू थोड़ी थोड़ी जाती है, लेकिन भागवत ऐसे ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो भागवत कथा का आयोजन करता है ना उसके जीवन में भी कल्याण ही कल्याण। शाश्वत मनसो महोत्सवम, ये जीवन जीवन को उत्सव, जीवन को रंगारंग कर देता है, ये जीवन बहुत सुंदर हो जाता है, बहुत सुंदर। इसलिए कहा गया तदैव शाश्वत मनसो महोत्सवम यदुत्तम श्लोक यशो वर्ण्यते। भगवान श्री कृष्ण का जस वर्णन करने वाला व्यक्ति उसके जीवन में केवल कल्याण ही कल्याण है। और हाँ अमंगल्य निवारण, मंगल का अमंगल का निवारण हो गया जीवन में। और जितने लोगों ने भागवत का सहारा लिया है सबके जीवन में, बल्कि शास्त्र में कहा गया है संसार ताप परिपातिता नाम क्षमाय भी भागवतम प्रवर्जति, दारिद्र्य दुख ज्वरदाहिता नाम माया पिशाची परिवर्तिता नाम संसार सिंधु परिपातिता नाम क्षमाय भी भागवतम प्रवर्जति। बोले भागवत गर्जन करके कहती है, आओ आओ माया पिशाची से जकड़े हुए मानव मेरे पास आओ,
और जो दरिद्र है, दारिद्र दुख ज्वरदाहिता नाम, बोले जो दरिद्र है वो भी मेरे पास आओ। बोले संसार ताप में जो पड़े हुए हैं उनको ही बुलाते हैं, बोले मेरे पास आओ। दारिद्र दुख ज्वरदाहिता नाम माया पिशाची परिमर्दिता नाम, माया की गोद में जो बिल्कुल निश्चस्त होकर के पड़े हुए उनको ही बुलाते हैं, आओ आओ मेरे पास आओ। और संसार सिंधु संसार सागर में जो पड़े हुए सबको बुलाते हैं, क्षमाय उनको, उनके उद्धार करने के लिए भागवत गर्जना करती है, आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं तुम्हारा उद्धार करने के लिए तैयार बैठा हूं। इसी प्रकार से भागवत की अनंत महिमा, अनंत महिमा है। कहां तक है भागवत की महिमा को व्यक्ति बखान नहीं कर सकता। ये थोड़े थोड़े जो यहां पर दिया गया है, अस्पष्ट कृति सुजसा मूर्खो भवति पंडितः इदं स्वस्तेनं पुंसाम अमंगल्य निवारणम, ये तो थोड़ा ही है। लेकिन सचमुच जब व्यक्ति धीरे धीरे करके श्री कृष्ण पदारविंद को प्राप्त हो जाता है, फिर उनके सामने ये सब तुच्छ है। इसी को नामापराध में कहा गया है कि अर्थवाद। छठा नाम अपराध क्या है? हाँ, और पवित्र नाम में अर्थवाद का आरोप, इसका क्या अर्थ है? कौन भक्त कहेगा अर्थवाद?
पैसे का व्यापार करना, नाम को बेचना।
देखिए रोज रोज हम पढ़ते हैं, इसीलिए दृष्टिपुतम पदम न्यसित, देख देख करके चलना बहुत अच्छा है। अर्थवाद क्या है?
अपने मन से अर्थ निकालना कि इसका ये होगा, ये होगा।
व्हाट इज अर्थवाद? कौन कहेगा? देखिए कितने कितने उत्तर आते हैं, एक ही उत्तर आना चाहिए। अर्थवाद का आरोप, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में अर्थवाद का आरोप करना। जय राम जी। अर्थवाद माने, ध्यान से सुन लीजिएगा, अर्थवाद को दूसरे शब्द में कहते हैं प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद, प्रयोजनवाद क्या है? नाम देने के लिए, नाम लेने के लिए कुछ कुछ बातें बताना, प्रयोजन बताना। अरे नाम ले लो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाए, एक नामा भासे तुम्हारे सर्व पाप जावे, इसको कहते हैं प्रयोजन। कुछ प्रयोजन को दिखला करके नाम लेने के लिए कहा जाता है, इसको इसी का नाम है अर्थवाद, प्रयोजनवाद इसको कहते हैं। परंतु जितने अर्थ हैं, जितने प्रयोजन है नाम में, वो सब बेकार। कैसे? बोले नाम की इतनी महिमा है, तुम जितने प्रयोजन कहोगे ना वो सब उसके नीचे रहेंगे। ये है नाम पर अर्थवाद का आरोप करना है कि नाम ले लो पाप कट जाएंगे। अरे पाप क्या कटेंगे? और नाम, हरिदास ठाकुर ने कहा पाप नाश, ये नाम का मुख्य प्रयोजन नहीं है। वहां भी प्रयोजन शब्द आया है। बोले हरि के चरणों में प्रेम हो जाना, ये नाम का मुख्य प्रयोजन है। और हरि के चरणों में प्रेम हो जाए, इससे बढ़कर के लाभ और क्या है? इसलिए नाम की महिमा में जो अर्थवाद का प्रयोग करते हैं, ये कर लो ये कर लो ये कर लो ये कर लो, ये सब है, ये सब बेकार की बात है। तो हरि नाम इतने शक्तिशाली है, इतने शक्तिशाली है, संसार में कोई भी वस्तु उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसलिए कहा गया कि नाम जप में अर्थवाद का आरोप करना। एक सेकंड। इसी प्रकार से हमको भागवत के से महिमा में कोई अर्थवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम और भागवत में कोई अंतर नहीं। इसलिए भागवत का मूल प्रयोजन है मेरे मित्रों, भक्तों, माताओं, केवल भगवान के चरणों में निष्काम भक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ऐसी भक्ति दुनिया भर के लोगों ने, बहुत से महान पुरुषों ने किया है। महेश पंडित करते थे और उदाहरण दत्त करते थे, जो यहाँ के सुबाहु सखा थे ब्रजमंडल के, इस महाप्रभु की लीला में, श्री कृष्ण की लीला में वही उदाहरण दत्त बन करके सेवा करते थे नित्यानंद महाप्रभु। सप्त ग्राम में जन्मे थे, बहुत सुंदर भक्त थे, नित्यानंद प्रभु की बहुत सेवा करी। अच्छा हुआ 26 साल की उम्र में उनकी पत्नी चली गई। पत्नी चले जाने के बाद महाविरक्त हो गए उदाहरण दत्त और नित्यानंद महाप्रभु के सेवक रहे और सेवा करते करते उनका उनकी भगवत प्राप्ति हो गई। महर्षि पंडित और उदाहरण दत्त पंडित ठाकुर, ये दोनों महान निष्काम भक्त थे। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है क्या?
पूछ रहे थे भगवान का नाम देने से जो कोई
लाभ
के बारे में
बताए
वो गलत है।
हाँ वही गलत है, वही उसी को प्रयोजन
बात
है,
महिमा तो हम बताते हैं।
आप कितने भी महिमा बताएंगे वो उसे छोटी पड़ेगी। वहां पर कहा गया अर्थवाद का आरोप नहीं करना, वहां पर कहा गया कि इस नाम की इतनी महिमा है ना, वो नाम इतनी शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है, आप कुछ भी भौतिक प्रयोजन बताइएगा वो उससे नीचे रहेगा। इसलिए अर्थवाद का आरोप नहीं करना चाहिए, महिमा जरूर बतानी चाहिए, अर्थवाद इससे ये इतना ही होगा ये नहीं बताना चाहिए। उसमें कोई घाटा नहीं है, ना ना ना, अपने अपनी समझ में रखनी चाहिए कि वास्तव में नाम कृष्ण है और कृष्ण के साथ आप क्या तुलना करोगे।
वो अपने लिए हमको ये
हाँ, किसी उसको भी समझाना पड़ेगा, धीरे धीरे करके वो समझ जाएगा। हाँ
पहले तो उसको
पहले उनको बताना पड़ेगा कि नाम से पाप कट जाता है, कट तो जाता है पर पाप कटता उतना ही काम नहीं है ना, उतना ही नहीं है, वो कितना कितना होता है वो कहना
है।
धीरे धीरे उठाना, वो सुन करके कम से कम आ जाए, आ जाए, ठीक है। हाँ निष्काम माने क्या? कामना माने अपनी इच्छाएं है ना, अपनी इच्छाएं। ये बालकों की बात है, जैसे किसी बालक को एक चॉकलेट दे दो और उसको एक सोने का एक धातु का एक 10 ग्राम वाला धातु दे दो, बालक क्या लेना चाहेगा? उनको पता नहीं कि जो 10 ग्राम वाला धातु है उससे उनको कितने चॉकलेट मिलेंगे, वो जीवन भर तक खा नहीं सकता, लेकिन उसको छोड़ करके वो चॉकलेट खाएगा। क्यों खाता है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है, है ना, उनको ज्ञान नहीं है, बस ये चॉकलेट खाने में पड़ा हुआ है। निष्काम भक्त में सिखाया जाता है कि भाई तुम चॉकलेट के पीछे क्यों पड़ रहे हो, तुम अपने बालकपन में क्यों ये सब मूर्खता कर रहे हो, धीरे धीरे प्रवृद्ध हो जाओ और भगवान की निष्काम भक्ति करो, ये सब छोटी मोटी चीजें इसको छोड़ो, ये तो अपने आप तुमको प्राप्त हो जाएगी। इसी को कहते हैं निष्काम भक्ति। कामना वास्तविक कामना एक मूर्खता है, ये जो कह रहे हैं, जैसे भागवत कोई पढ़ेगा, गीता कोई पढ़ेगा, उसकी मूर्खता कट जाएगी, उसका कर्तव्य क्या है अकर्तव्य क्या है वो समझ लेगा, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य वो समझ लेगा, तुरंत समझ लेगा कि भाई हमको ये बालपन नहीं करना चाहिए, छोटी मोटी चीजों के पीछे नहीं पड़नी चाहिए। और ये भी अज्ञानता है, शरीर शरीर मर जाएगा, ये दुख देने वाली चीज है, ये अनित्य है, इसलिए इनके पीछे पड़ना बेकार है। तो निष्काम भक्ति कोई आपको जोर जबरन नहीं करा रहा है, निष्काम भक्ति करना ये बुद्धिमत्ता है, सत्काम भक्ति करना ये मूर्खता है। ध्रुव महाराज स्वयं कहते हैं, काचम विचित्वन अपिदिप्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न जाचे, हे प्रभु मुझे वरदान की कोई आवश्यकता नहीं है, बस मैं कृतार्थ हो गया। जो ध्रुव महाराज स्थान के लिए गए थे पर वही कहते हैं मैं कृतार्थ हो गया। इसलिए सकाम भक्ति जो कर रहे हैं वो मूर्ख है, उनको पता नहीं क्या वो कर रहे हैं, पर किसी मूर्ख को जल्दी मूर्ख को वो बिगड़ जाता है, उसको मूर्ख कह देने से बिगड़ जाएगा। हाँ जीवन के बहुत निम्न स्तर पर है, निम्न स्तर पर ठीक है, उनके लिए भी कहा गया अर्थार्थी, ठीक है आओ धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ, अग्नि के सानिध्य में सब कुछ अग्निमय हो जाएगा, ऐसे ही भगवत सानिध्य में भगवत परायण हो जाएगा तो कोई बात नहीं है कि नहीं। ये कुछ है केवल हरि भजन करना चाहिए, बाकी किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। और हरि भजन करने के लिए जो थोड़ी बहुत तपस्या का वर्णन किया गया, यदि वो तपस्या कोई कर लेता है तो अच्छा है ना, पर अधिक से अधिक भगवान को हृदय में बिठाने का प्रयत्न करना चाहिए बार बार। जितने विधि निषेध है उसमें कहा गया कि हरि को चित्त में बिठाना यही विधि है, हरि बाहर जाता है ये निषेध है, हरि को बिठाना बस। सर्व शास्त्र सर्व विधि निषेधयो एतयोरेव किंकरः, स्मर्तव्य सततम् विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित्। किसी भी क्षण हरि को भगाना नहीं हृदय में, ठीक है चले।
प्रभु जी का सवाल जो अठवा का आरोप जो है, आरोप शब्द जो है,
आरोप करना, थोपना, 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 मैं नहीं कहूंगा आप गलत है, आप गलत है, ये हम थोप रहे हैं, आप गलत नहीं है पर हम आप पर थोप रहे हैं, इसलिए आरोप नहीं करना चाहिए कि नाम